एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारकों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में अक्सर सिगमंड फ्रॉयड का ख्याल आता है, लेकिन जिनकी अपनी सोच की उड़ान आप कह सकती हैं कहीं ज्यादा ऊंची और शायद थोड़ी रहस्यमयी भी थी। कार्ल गुस्ताव युंग। हमें श्रोता से जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर आज हम युंग के विचारों की, उनकी दुनिया की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे।
नमस्कार, और बिल्कुल सही कहा आपने। युंग को सिर्फ फ्रॉयड के साथ ही या सिर्फ एक मनोचिकित्सक कह देना वो उनके काम के साथ मुझे लगता है पूरी तरह न्याय नहीं करता। वो तो एक तरह से मानव मन के अन्वेषक थे।
अन्वेषक, हाँ ये सही शब्द है।
जिन्होंने सपनों, मिथकों, कला, यहाँ तक कि धर्म और कीमियागरी जैसी चीज़ों में भी मतलब गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को ढूंढने और उजागर करने की कोशिश की। उनका काम एक नक्शे जैसा है, है ना, जो हमें अपने ही अंदर के अनजान गलियों में रास्ता दिखाता है।
तो चलिए इसी नक्शे के सहारे आगे बढ़ते हैं। शुरुआत उस जमाने से करते हैं जिसमें युंग जी रहे थे। जन्म 1875, निधन 1961। ये तो यूरोप के लिए मतलब भारी उथल पुथल वाला दौर था।
बहुत ज्यादा
पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं, विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था, और फिर दो विश्व युद्ध जिन्होंने इंसानियत को झकझोर के रख दिया। इस पूरे माहौल ने, इस उथल पुथल ने उनके विचारों को कैसे गढ़ा होगा?
देखिए, असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। आप सोचिए, एक तरफ डार्विन, मार्क्स, नीचे जैसे लोग थे जो धर्म और परंपरा पर मतलब सीधे सवाल उठा रहे थे। विज्ञान का बोलबाला था, ऐसा लग रहा था जैसे हर रहस्य अब सुलझी जाएगा।
हाँ, एक तरह का आशावाद भी था शायद।
हाँ बिल्कुल था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। लोगों में एक आध्यात्मिक खालीपन, एक बेचैनी भी बढ़ रही थी। पुराने जवाब वो नाकाफी लग रहे थे। और इसी माहौल में देखिए, फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण की शुरुआत की। ये कहना कि हमारे व्यवहार की जड़ें हमारे अचेतन मन में हैं, खासकर दमित यौन इच्छाओं में, ये उस वक्त एक क्रांतिकारी विचार था।
हाँ, इसने तो हलचल मचा दी होगी पूरी यूरोप में।
बिल्कुल, और युंग इसी बौद्धिक और सांस्कृतिक बवंडर के, आप कह सकते हैं, केंद्र में थे। अचेतन, कामुकता, सपनों के अर्थ, इन सब पे जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी।
और फिर पहला विश्व युद्ध, उसकी भयावहता ने तो जरूर इंसान की प्रकृति के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया होगा।
निश्चित रूप से, वो जो महाविनाश था उसने युंग के सामूहिक छाया यानी कलेक्टिव शैडो के विचार को और पुख्ता किया होगा। उनका मानना था कि हर इंसान और हर समाज के भीतर एक अंधेरा, एक विनाशकारी पहलू छिपा होता है जिसे हम आमतौर पर देखना या मानना नहीं चाहते।
हाँ, जिसे हम दबा देते हैं।
बिल्कुल, युंग ने दिखाया कि कैसे वो तथाकथित सभ्य समाज भी मौका मिलने पर बर्बरता पर उतर सकता है। और ये सिर्फ युंग की सोच नहीं थी, आप उनके समकालीन लेखक हेरमन हेस के उपन्यासों में देखें या भौतिक फिजिसिस्ट वुल्फगैंग पौली की बातों में। उस दौर की बेचैनी, वो अलगाव, अर्थ की तलाश, ये सब आपको वहां भी मिलेगा।
ये दिलचस्प है कि कैसे बाहरी दुनिया की उथल पुथल उनके आंतरिक विचारों से इतनी गहराई से जुड़ रही थी। अच्छा, अब अगर उनके निजी जीवन की तरफ चलें तो उनका बचपन कैसा था? सुना है कि माहौल थोड़ा अलग किस्म का था।
हाँ, कुछ मायनों में काफी अनोखा कह सकते हैं। उनके पिता स्विट्जरलैंड में एक गांव के पादरी थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी अपनी आस्था डगमगा रही थी। वो खुद शक और सवालों से घिरे रहते थे।
अच्छा, पादरी होते हुए भी?
जी हाँ। और माँ एमिली युंग, वो एक काफी, कह सकते हैं, जटिल व्यक्तित्व थी। वो संवेदनशील थीं, कभी कभी थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता से भी जूझती थीं, लेकिन उनमें एक सहज आध्यात्मिक जुड़ाव था। वो आत्माओं और रहस्यमय चीजों की बातें किया करती थी। तो सोचिए, इस विरोधाभासी माहौल ने यकीनन युवा काल के मन पर गहरी छाप छोड़ी होगी।
हाँ, एक तरफ तर्क और धर्म का संघर्ष और दूसरी तरफ रहस्य और मनोविज्ञान की सीधी अनुभूति।
बिल्कुल।
तो क्या ये कह सकते हैं कि उनके बचपन के अनुभवों ने ही उनके बाद के सिद्धांतों की नींव रखी?
कहते हैं उन्हें कुछ अजीब से अनुभव भी हुए थे बचपन में।
हाँ, उन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा मेमोरीज ड्रीम्स रिफ्लेक्शंस में इसका जिक्र किया है। उन्हें बचपन में बहुत तीव्र सपने आते थे, कुछ अनुभव तो दिव्य दर्शन जैसे थे। एक खास अनुभव था जिसमें उन्हें लगता था कि उनके अंदर दो व्यक्तित्व हैं।
दो व्यक्तित्व? हाँ, एक तो वो स्कूल जाने वाला सामान्य बच्चा काल, और दूसरा एक बहुत बूढ़ा ज्ञानी व्यक्ति जो जैसे समय से परे हों। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन शायद यहीं से उनके भीतर मानव स्वभाव की द्वैतता यानी डुअलिटी और आंतरिक दुनिया की सच्चाई और जिसे बाद में उन्होंने सामूहिक अचेतन कहा, उसकी समझ पैदा होनी शुरू हुई होगी।
तो इसी पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने पढ़ाई किस चीज की चुनी? जाहिर है मनोविज्ञान की तरफ ही झुकाव रहा होगा।
शुरुआत में तो उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की बेसल विश्वविद्यालय से, लेकिन फिर उन्होंने मनोरोग विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। शायद उन्हें लगा कि यही वो फील्ड है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता, शरीर और मन की पहेलियां, वो कहीं ना कहीं आकर मिलती हैं। ये उनके लिए सिर्फ करियर का चुनाव नहीं था, बल्कि एक तरह से अपनी आंतरिक खोज को आगे बढ़ाने का रास्ता भी था।
और यहीं से उनके काम को पहचान मिलनी शुरू हुई, वो जो कॉम्प्लेक्स वाली बात है।
हाँ, वो बुर्गोल्ज़ली अस्पताल में हुआ। 1900 में वो ज्यूरिख के इस मशहूर अस्पताल से जुड़े जहां यूजिन ब्यूलर जैसे बड़े नाम थे। वहीं पर यूंग ने अपना प्रसिद्ध वर्ड एसोसिएशन टेस्ट विकसित किया।
अच्छा, ये टेस्ट क्या था?
इसमें वो मरीज को एक शब्द देते थे और फिर देखते थे कि वो कितनी जल्दी और क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर प्रतिक्रिया देने में हिचकिचाहट हो या कोई अजीब सा शब्द आए, तो वो अक्सर अचेतन में दबी किसी भावनात्मक गांठ की ओर इशारा करता था। इसी गांठ को यूंग ने कॉम्प्लेक्स कहा।
अच्छा, मतलब हमारे अंदर की दबी हुई भावनाएं?
बिल्कुल, और ये कॉम्प्लेक्स हमारे व्यवहार को अनजाने में नियंत्रित कर सकते हैं। इस खोज ने उन्हें मनोचिकित्सा जगत में काफी जल्दी पहचान दिलाई,
और इसी पहचान ने उन्हें आखिरकार सिगमंड फ्रॉयड तक पहुंचाया, जिनके साथ उनका रिश्ता, खैर वो तो अपने आप में एक कहानी है, बड़ा गहरा और फिर उतना ही विवादास्पद।
सही कहा आपने। 1906 में उनका संपर्क हुआ और 1907 में वियना में उनकी पहली मुलाकात हुई। कहते हैं कि वो पहली बार मिले तो 13 घंटे तक लगातार बात करते रहे।
13 घंटे?
जी हाँ। फ्रॉयड यूंग की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस मान बैठे। मनोविश्लेषण आंदोलन का भविष्य देखा उन्होंने यूंग में। यूंग अंतर्राष्ट्रीय मनोविश्लेषण संघ के पहले अध्यक्ष भी बने। एक जबरदस्त बौद्धिक साझेदारी थी, एक पिता पुत्र जैसा रिश्ता बन गया था।
लेकिन फिर ये दोस्ती, ये साझेदारी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतने गहरे रिश्ते के बाद रास्ते एकदम अलग हो गए?
देखिए, मतभेद गहरे थे और बुनियादी थे, सतही नहीं थे। सबसे बड़ा मुद्दा तो लिबिडो की परिभाषा पर था।
हाँ, फ्रॉयड की लिबिडो थ्योरी।
फ्रॉयड के लिए लिबिडो मूलतः यौन ऊर्जा थी। उनका मानना था कि यही हमारे सारे व्यवहार, हमारी सारी प्रेरणाओं के पीछे है। यूं को ये परिभाषा बहुत बहुत सीमित लगी। उनका मानना था कि लिबिडो एक ज्यादा व्यापक जीवन ऊर्जा है। इसमें यौन इच्छा तो है, लेकिन उसके साथ साथ रचनात्मकता, आध्यात्मिकता, आगे बढ़ने की चाह, ये सब शामिल हैं।
अच्छा, मतलब एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मतभेद था अचेतन की प्रकृति पर। फ्रॉयड का जोर व्यक्तिगत अचेतन पर था, यानी हमारी भूली बिसरी यादें, हमारे दमित इच्छाएं, जबकि यूंग की रुचि उस चीज में बढ़ रही थी जिसे उन्होंने सामूहिक अचेतन कहा, यानी पूरी मानव जाति की साझा मानसिक विरासत। और साथ ही मिथकों, धर्म, कीमिया, इन सब में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी।
हाँ, ये फ्रॉयड के ज्यादा वैज्ञानिक नजरिए से शायद मेल नहीं खाता था।
बिल्कुल नहीं खाता था। फ्रॉयड को ये सब अवैज्ञानिक और रहस्यमय लगता था। तो विचारों का ये टकराव बढ़ता गया और आखिरकार 1913 में ये रिश्ता पूरी तरह टूट गया। ये दोनों के लिए एक बड़ा झटका था, बौद्धिक स्तर पर भी और भावनात्मक स्तर पर भी।
फ्रॉयड जैसे दिग्गज से और अपने मेंटर से इस तरह अलग होने का दौर यूंग के लिए निश्चित रूप से काफी मुश्किल रहा होगा। उन्होंने खुद इसे अचेतन से सामना, कन्फ्रंटेशन विद दी अनकॉन्शियस कहा है। ये क्या था? क्या ये किसी तरह का, मतलब, मानसिक संतुलन खोना था या कुछ और?
देखिए, इसे मानसिक संतुलन खोना कहना शायद सही नहीं होगा। हाँ, ये उनके लिए बेहद उथल पुथल भरा, बहुत चुनौतीपूर्ण समय जरूर था, लेकिन ये एक तरह से आप कह सकती हैं जानबूझकर अपने ही मन की गहराइयों में उतरने जैसा था। एक स्वैच्छिक यात्रा थी ये,
जानबूझकर।
हाँ, 1913 के बाद कई सालों तक उन्होंने दुनिया से थोड़ा कटकर अपने सपनों, अपनी कल्पनाओं और अंदर से उठने वाली आवाजों का सामना किया, उनसे संवाद किया, उन्हें समझने की कोशिश की, और इन सारे अनुभवों को उन्होंने बड़ी बारीकी से एक खुफिया, हाथ से लिखी और चित्रित किताब में दर्ज किया।
आप द रेड बुक की बात कर रहे हैं?
जी हाँ, लिबर नोवस, या जिसे अब द रेड बुक के नाम से जाना जाता है।
इसका जिक्र आते ही एक रहस्य का पर्दा सा उठता है। ये किताब तो उनकी मृत्यु के दशकों बाद, शायद 2009 में प्रकाशित हुई। इतने सालों तक क्यों छुपी रही ये?
क्योंकि ये उनके लिए एक बेहद निजी, बेहद पवित्र दस्तावेज था। इसमें उनके वो सारे गहरे अनुभव, उनकी कल्पनाएं, उनके अचेतन के पात्रों से हुए संवाद और उनके बनाए हुए अद्भुत चमकीले चित्र थे। ये उनकी अपनी आंतरिक यात्रा का, आप कह सकते हैं, कच्चा चिट्ठा था। शायद वो इसे उस रूप में दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार नहीं थे, या उन्हें लगा कि लोग इसे समझ नहीं पाएंगे।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो संकट का दौर था, जैसा आपने कहा, ये असल में उनके जीवन का सबसे रचनात्मक दौर साबित हुआ।
बिल्कुल, जैसा उन्होंने बाद में कहा भी, वो साल जब मैं अपनी आंतरिक छवियों के पीछे पड़ा रहा, वो मेरे जीवन के सबसे अहम साल थे। उनके जो सबसे मौलिक और प्रभावशाली विचार हैं, सामूहिक अचेतन, आर्कीटाइप, व्यक्तिकरण, वो सब इसी गहरे आत्म अन्वेषण से, इसी अचेतन से सामना करने के दौर से निकले। ये बिखराव नहीं, बल्कि एक तरह का पुनर्जन्म था उनके लिए।
तो चलिए अब सीधे उन मौलिक विचारों पर आते हैं जो इस गहरे आत्ममंथन से उपजे। युंग के सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माने जाते हैं? कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनके नाम के साथ जुड़े हैं?
उनके कई विचार हैं जिन्होंने मनोविज्ञान और उससे आगे भी बहुत गहरा असर डाला है। कुछ प्रमुख विचारों को समझना बहुत जरूरी है अगर हम युंग को समझना चाहते हैं। पहला और शायद सबसे अनोखा विचार है सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का।
हाँ, ये फ्रॉयड की व्यक्तिगत अचेतन से अलग है ना?
बिल्कुल अलग, और उससे कहीं ज्यादा गहरा। व्यक्तिगत अचेतन में तो हमारी अपनी भूली बिसरी यादें, हमारी दमित इच्छाएं वगैरह होती हैं, लेकिन सामूहिक अचेतन युंग के अनुसार पूरी मानव जाति की साझी मानसिक विरासत है। ये हमें जन्म से मिलती है। इसमें वो बुनियादी पैटर्न और छवियां होती हैं जो सभी इंसानों में किसी न किसी रूप में समान रूप से पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी संस्कृति या समय के हों।
अच्छा, मतलब ये हमारे डीएनए जैसा कुछ है, पर मानसिक स्तर पर।
हाँ, आप कुछ हद तक ऐसा कह सकती हैं, ये एक तरह का मानसिक ब्लूप्रिंट है।
और इसी सामूहिक अचेतन में वो चीजें रहती हैं जिन्हें युंग आर्केटाइप कहते हैं। ये शब्द तो आजकल काफी सुनने में आता है।
बिल्कुल, आर्केटाइप दरअसल सामूहिक अचेतन के ही मूलभूत पैटर्न या आदिम छवियां हैं। ये जन्मजात मानसिक संरचनाएं हैं जो हमारे दुनिया को समझने और अनुभव करने के तरीके को आकार देती हैं। जैसे माँ का आर्केटाइप हमें माँ के प्रति एक खास तरह की भावना और अपेक्षा देता है, भले ही हमारी असल माँ कैसी भी रही हो।
अच्छा, तो ये यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं।
हाँ, यूनिवर्सल। कुछ प्रमुख आर्केटाइप हैं, छाया, शैडो, ये हमारे व्यक्तित्व का वो अंधेरा अस्वीकृत हिस्सा है जिसे हम छुपाना चाहते हैं या जिससे हम अनजान हैं। एनिमा एनिमस, हर पुरुष के भीतर मौजूद स्त्रीत्व का आर्केटाइप एनिमा और हर स्त्री के भीतर मौजूद पुरुषत्व का आर्केटाइप एनिमस, ये हमारे विपरीत लिंग को समझने और उससे जुड़ने में मदद करता है। सेल्फ, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण आर्केटाइप है। ये संपूर्णता, संतुलन और एकीकरण का प्रतीक है। ये हमारे व्यक्तित्व का केंद्र है जिसे पाना ही व्यक्तिकरण का लक्ष्य है।
सेल्फ। इनके अलावा ग्रेट मदर, महान माँ, वाइज ओल्ड मैन, ज्ञानी बूढ़ा, हीरो, नायक, ट्रिक्स्टर, छलिया जैसे कई और आर्किटाइप हैं। और ये आर्किटाइप हमें दुनिया भर की कहानियों, मिथकों, सपनों और कलाओं में बार बार अलग अलग रूपों में नजर आते हैं। ये आर्किटाइप वाली बात तो वाकई बड़ी दिलचस्प है। मतलब हमारी कई कहानियों, हमारे किरदारों के पैटर्न पहले से हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अच्छा, और एक और शब्द जो युंग से बहुत जुड़ा हुआ है, व्यक्तिकरण या इंडिविजुएशन, इसका क्या मतलब है? ये सेल्फ हेल्प जैसा कुछ है?
सेल्फ हेल्प से कई ज्यादा गहरा है ये। व्यक्तिकरण, इंडिविजुएशन, युंग के मनोविज्ञान का केंद्रीय लक्ष्य है, आप कह सकते हैं उसकी मंजिल है। ये जीवन भर चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक विकास यात्रा है। इसका मकसद सिर्फ अपनी कमियों को दूर करना या खुश रहना नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व के सभी हिस्सों को, अपने चेतन मन और अचेतन मन को, अपने स्त्रीत्व और पुरुषत्व एनिमा एनिमस को, अपनी छाया को, इन सबको समझना, स्वीकार करना और उन्हें एक साथ लाना है, एकीकृत करना है।
मतलब खुद को पूरी तरह से जानना और स्वीकार करना।
सिर्फ जानना नहीं, बल्कि वो बनना जो आप असल में हैं, अपनी पूरी संभावना को पाना। ये एक तरह से आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है, अपने सच्चे स्व यानी सेल्फ तक पहुंचने की कोशिश। यह आसान रास्ता नहीं है, इसमें संघर्ष भी है, लेकिन युंग के लिए यही जीवन का असली मकसद था।
और उन्होंने लोगों के अलग अलग स्वभाव के बारे में भी बहुत काम किया था, जैसे कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी।
हाँ, ये उनका एक और बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल योगदान है, मनोवैज्ञानिक प्रकार का सिद्धांत। हम आज जिन शब्दों का इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, अंतर्मुखता यानी जिनकी ऊर्जा का स्रोत अंदरूनी दुनिया है और बहिर्मुखता यानी जिनकी ऊर्जा बाहरी दुनिया से आती है, इन कॉन्सेप्ट्स को लोकप्रिय बनाने का श्रेय यूंग को ही जाता है।
अच्छा, ये यूंग ने दिए थे, मुझे लगता था ये आम शब्द है।
शब्द शायद पहले भी रहे हों, पर इनको मनोवैज्ञानिक परिभाषा और महत्व यूंग ने दिया, और इसके साथ ही उन्होंने चेतना के चार मुख्य काम या फंक्शन बताए। चिंतन थिंकिंग यानी तर्क और विश्लेषण से सोचना, भावना फीलिंग यानी मूल्यों और एहसासों के आधार पर निर्णय लेना, संवेदना सेंसेशन यानी हमारी पांच इंद्रियों से सीधी जानकारी लेना, और अंतर्ज्ञान इंट्यूशन यानी बिना तर्क के एक सहज बोध से चीजों को समझना।
हाँ, ये चार फंक्शंस।
बिल्कुल, और इन दो मूल वृत्तियों अंतर्मुखता बहिर्मुखता और इन चार कार्यों के अलग अलग मेल से यूंग ने कहा विभिन्न व्यक्तित्व प्रकार बनते हैं। मशहूर मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI टेस्ट जो आजकल इतना पॉपुलर है, वो यूंग के इसी सिद्धांत पर आधारित है, हालांकि थोड़ा सिंप्लीफाई करके।
ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। अच्छा, यूंग ने लिखा भी बहुत ज्यादा, अगर कोई इनके विचारों को गहराई से समझना चाहे तो उनकी कौन सी किताबें खासतौर पर पढ़नी चाहिए, शुरुआत कहाँ से की जाए?
हाँ, उनका लेखन काफी गहरा है और कई बार थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो उनके विचारों को समझने में मदद करती हैं। एक तो जाहिर है साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस, जिसका बाद में नाम हुआ सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो किताब है जिसने फ्रायड से उनके रास्ते अलग किए। इसमें सामूहिक अचेतन और मिथकों पर शुरुआती काम है, फिर साइकोलॉजिकल टाइप्स जिसमें अंतर्मुखता बहिर्मुखता और उन चार कार्यों का बहुत विस्तार से वर्णन है। एक बहुत ही अनोखी किताब है साइकोलॉजी एंड अल्केमी। इसमें उन्होंने दिखाया कि मध्ययुग की कीमियागरी सिर्फ सोना बनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि वो व्यक्तिकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का एक प्रतीकात्मक नक्शा थी। ये कमाल की अंतर्दृष्टि थी।
कीमियागरी और मनोविज्ञान का कनेक्शन, ये तो सोचना भी मुश्किल है।
हाँ, यूंग ऐसे ही अनूठे कनेक्शंस बनाते थे। फिर उनकी आत्मकथा है मेमोरीज ड्रीम्स रिफ्लेक्शंस, ये उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ये बाहरी घटनाओं से ज्यादा उनकी आंतरिक यात्रा, उनके सपनों और अनुभवों पर केंद्रित है। यूंग को समझने के लिए ये शायद सबसे अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये काफी निजी और पढ़ने में आसान है।
अच्छा, तो यहाँ से शुरू किया जा सकता है।
हाँ, और जाहिर है द रेड बुक भी है जो उनके सिद्धांतों का स्रोत है, एक तरह से बीज है, लेकिन वो थोड़ी इंटेंस और विजुअल किताब है, उसे समझना एक अलग अनुभव है।
इतनी गहरे और कई बार मुख्य धारा से हटकर विचार देने वाले यूंग को क्या उनके जीवन काल में पहचान मिली? क्या अकेडमिक जगत में उन्हें स्वीकार किया?
हाँ मिली, लेकिन धीरे धीरे। शुरुआत में उनके विचारों को खासकर आध्यात्मिकता और रहस्यवाद पर जोर देने के कारण अकादमिक हलकों में थोड़े संदेह से देखा गया। फ्राइड का प्रभाव भी बहुत था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनकी अहमियत समझी जाने लगी। उन्हें ज्यूरिख साहित्य पुरस्कार मिला 1932, हार्वर्ड 1936 और ऑक्सफर्ड 1938 जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों से मानद डॉक्टरेट मिली।
अच्छा।
हाँ, और उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन का मानद फेलो भी बनाया गया 1939। यहाँ तक कि बेसल विश्वविद्यालय ने 1944 में खास उनके लिए मेडिकल साइकोलॉजी की एक चेयर स्थापित की। तो ये सब दिखाता है कि उनके काम को गंभीरता से लिया जाने लगा था, भले ही कुछ विवाद हमेशा बने रहें।
और आज के दौर में 21वीं सदी में यूंग कितने प्रासंगिक हैं? उनकी विरासत क्या है? क्या उनके विचार आज भी मायने रखते हैं?
ज्यादा, उनकी विरासत बहुत व्यापक है। मनोचिकित्सा में तो उनका असर है ही। यूंगियन एनालिसिस आज भी दुनिया भर में प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा गेस्टॉल थेरेपी, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, आर्ट थेरेपी जैसी कई नई विधाओं पर भी उनका गहरा प्रभाव है।
हाँ, और वो MBTI टेस्ट का जिक्र तो आपने किया ही।
बिल्कुल, लेकिन उनका असर सिर्फ मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है, वो साहित्य कला संस्कृति धर्माध्ययन इन सब में फैला हुआ है।
जैसे साहित्य और संस्कृति में कैसे, कुछ उदाहरण दे सकते हैं?
जरूर। लेखक हेरमन हेस तो उनके मरीज भी थे और गहरे दोस्त भी। उनके उपन्यासों जैसे सिद्धार्थ या स्टेपन वुल्फ में आपको यूंगियन थीम साफ दिखेंगी। उनके अलावा उर्सुला के लेगविन, फिलिप पुलमन, हिज डार्क मटीरियल्स वाले नील गैमन, कितने ही समकालीन और लोकप्रिय लेखकों ने उनके आर्किटाइप छाया व्यक्तिकरण जैसे विचारों से खुलकर प्रेरणा ली है।
अच्छा, हैरी पॉटर में भी?
हाँ, हैरी पॉटर सीरीज को भी आप यूंगियन नजरिए से देख सकते हैं। नायक की यात्रा, उसका अपने छाया, वोल्डेमॉर्ट से संघर्ष, मेंटर्स डंबलडोर यानी वाइज ओल्ड मैन आर्किटाइप, ये सब पैटर्न वहां मौजूद हैं।
और जोसेफ कैम्बल का काम, जिन्होंने मिथकों पर इतना लिखा है, उनका क्या कनेक्शन है यूंग से?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। जोसेफ कैंपल का मशहूर काम किताब द हीरो विद अ थाउजेंड फेसेस, एक नायक हजार चेहरों वाला, वो सीधे सीधे यंग के आर्केटाइप, खासकर हीरो की यात्रा, हीरोज जर्नी के विचार पर आधारित है। कैंपल ने यंग के विचारों को मिथकों के अध्ययन में लागू किया।
और कहते हैं इसी किताब ने जॉर्ज लुकास को स्टार वॉर्स बनाने के लिए प्रेरित किया।
बिल्कुल सही, लुकास ने खुद ये माना है। तो आप सोचिए, यंग के विचार कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंच गए हैं, स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव से लेकर हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों तक। उनके विचार आज भी फिल्मों में, उपन्यासों में, कला में, और हाँ, व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ और समकालीन आध्यात्मिकता की दुनिया में जिंदा हैं और फल फूल रहे हैं।
वाकई कमाल की यात्राएं उनके विचारों की। अच्छा, यंग के कुछ कथन, कुछ कोट्स भी बहुत मशहूर है। वो बड़े गहरे और सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक है, दूसरों में जो कुछ हमें परेशान करता है वो हमें खुद को समझने में मदद कर सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मतलब क्या है?
हाँ, ये बहुत गहरा कथन है और ये प्रोजेक्शन यानी मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण के सिद्धांत से जुड़ा है। यूंग का मानना था कि अक्सर हम अपने जिन पहलुओं को, खासकर अपने नकारात्मक पहलुओं या अपनी छाया को खुद में स्वीकार नहीं करना चाहते, उन्हें हम अनजाने में दूसरों पर डाल देते हैं। फिर हमें वही चीजें दूसरों में बुरी लगने लगती हैं, हमें उनसे चिढ़ होती है, गुस्सा आता है।
अच्छा, मतलब हम अपनी ही कमी दूसरे में देख रहे होते हैं।
बिल्कुल, यूं कह रहे हैं कि अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें दूसरों की कौन सी बात चुभ रही है, कौन सी बात हमें परेशान कर रही है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि शायद वही चीज या उससे मिलती जुलती कोई चीज हमारे अपने भीतर भी मौजूद है, जिसे हम देख नहीं पा रहे या स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो ये दूसरों की आलोचना एक तरह से आत्मज्ञान का, सेल्फ अवेयरनेस का एक शक्तिशाली औजार बन सकती है।
एक और कथन जो आपने पहले भी जिक्र किया था, जीवन भर का सौभाग्य है वो बनना जो आप वास्तव में है।
हाँ, ये सीधे सीधे व्यक्तिकरण के सार को पकड़ता है। उनके लिए जीवन का परम लक्ष्य कोई बाहरी चीज पाना नहीं था, जैसे सफलता, शोहरत या दौलत, बल्कि असली लक्ष्य था अपने अंदर के असली स्व को पहचानना, उसे विकसित करना और उसके अनुसार जीना। ये आसान नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली यात्रा, इसमें उतार चढ़ाव हैं, लेकिन यंग के अनुसार यही सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा सौभाग्य है जो किसी इंसान को मिल सकता है।
और एक और कथन जो मुझे लगता है आज के दौर में शायद और भी ज्यादा मायने रखता है, आपकी दृष्टि तब स्पष्ट होती है जब आप अपने हृदय में देखते हैं। जो बाहर देखता है सपने देखता है, जो भीतर देखता है जागता है।
वो पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि असली समझ, असली स्पष्टता, जिसे अंग्रेजी में विजन कहते हैं, वो अपने अंदर झांकने से ही आती है। जो इंसान सिर्फ बाहर की चीजों, बाहरी सफलताओं, दूसरों की राय के पीछे भागता रहता है, वो एक तरह के सपने या भ्रम में जी रहा है। सच्चा जागरण, सच्ची अवेकनिंग तो तब होती है जब हम अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ते हैं, अपनी भावनाओं से, अपने अचेतन से, अपनी आत्मा से, यूं कहेंगे।
तो अंदर देखना ज्यादा जरूरी है।
हाँ, बाहर देखने से ज्यादा।
चलते चलते यूं के बारे में कोई ऐसी रोचक बात या कम ज्ञात पहलू जो हमारे श्रोताओं को दिलचस्प लगे।
एक तो उनकी वो रेड बुक का सालों तक रहस्य बने रहना और फिर इतने सालों बाद प्रकाशित होना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। दूसरा, उनका वो बॉलिंगन टॉवर। ज्यूरिख झील के किनारे उन्होंने एक टॉवर बनाया था, खुद अपने हाथों से, पत्थर जोड़ जोड़कर, धीरे धीरे, कई सालों में।
खुद बनाया था?
हाँ, काफी हद तक खुद। वो उनके लिए सिर्फ एक छुट्टी का घर नहीं था, बल्कि एक पवित्र स्थान था, उनकी आत्मा का प्रतीक था। वहां बिजली भी नहीं थी शुरुआत में, वहां वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर अपने आंतरिक काम में, अपने लेखन में, अपनी चित्रकारी में डूब जाते थे। वो उनके लिए अपने स्व से जुड़ने का, जमीन से जुड़ने का एक जरिया था। वो टॉवर आज भी है और यूंगियन मनोविज्ञान का एक प्रतीक माना जाता है।
ये तो वाकई बहुत रोचक है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए चिंतन हेतु क्या विचार छोड़ना चाहेंगे आप, यंग के इस पूरे जीवन और काम को देखते हुए?
या सिद्धांतों में नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने भीतर की गहराइयों में छिपा है। उन्होंने हमें अपने सपनों को, अपनी कल्पनाओं को, यहां तक कि अपने डर और अपने अंधेरे हिस्सों, अपनी छाया को भी गंभीरता से लेने के लिए कहा, क्योंकि वहीं से विकास और संपूर्णता का रास्ता निकलता है। तो आज की दुनिया में जहां हर कोई बाहरी चीजों पर, सोशल मीडिया लाइक्स पर, करियर की सीढ़ियों पर, भौतिक चीजों पर इतना ज्यादा केंद्रित है, ये सोचना जरूरी है कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को कितना वक्त और कितनी तवज्जो देते हैं। क्या हम अपने सपनों पर ध्यान देते हैं? क्या हम अपनी उन भावनाओं को समझते हैं जो हमें असहज करती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर की इस अंतहीन दौड़ में हम अपने उस असली स्व से दूर होते जा रहे हैं, जिसे पाना युंग के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। ये सवाल है जो मुझे लगता है युंग आज भी हमसे पूछ रहे हैं।
बहुत गहरा सवाल है। सोचने के लिए, इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।